हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग एक साथ पुकारो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा, जय गुरु देवा जय गुरु देवा। टैगोर हरि बोल हरि बोल, नितय गौर हरि बोल। नितय गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री कुसुम सरोवर धाम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री श्री राधा बन बिहारी जी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं, ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। यहाँ से आवाज नहीं आ रही है। भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये महामंत्र जो है वो हमारे लिए इस जीवन की परमोच्च भेंट है और ये भगवान ने हमको फ्री में दी है, लेकिन हम उसको लेने में भी संकोच करते हैं। जब झगड़ा करते हैं ना तो किसी को बोलना पड़ता है क्या, जोर से बात करो, जोर से झगड़ा करो और जोर से बोलो। आपकी जितनी क्षमता है उतनी पूरी 100% 120% भी हम यूज़ कर लेते हैं जब झगड़ा होता है, लेकिन जब भगवान के नाम का कीर्तन होता है तो हमारी आवाज़ नाभि से ही निकलती नहीं। फिर कंठ की बात तो दूर रही, फिर जिह्वा की बात तो उसके बाद की बात है। तो ये बात ध्यान में रखना कि जैसे ही भगवान के नाम का उच्चारण होता है सारे दूसरे स्विच ऑफ होने चाहिए और भगवान के नाम में हमको अपने आप को समर्पित करना है। रोज हम अकेले जब करते हैं लेकिन यात्रा में 200-200 लोगों का संग मिलता है भगवान के नाम को पुकारने में। यज्ञा ये संकीर्तना ये प्रायर यजंती ही सुमे दशहा। ये जो संकीर्तन यज्ञ है इसमें बुद्धिमान लोग भाग लेते हैं, जो नहीं भाग लेते हैं इसका मतलब वो बुद्धिमान नहीं है। जिनको इसमें रुचि नहीं है मतलब वो बुद्धिमान नहीं है। हम सब लोगों को बुद्धिमान बनना है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बुद्धिमान है उसका उपयोग नहीं करते भगवान के लिए, बस इतना ही। भगवान को प्राप्त करने की जो बुद्धि है वो भगवान ने हमको मनुष्य शरीर के साथ ही दे दी है। उसका कौन कितना इस्तेमाल करता है उपयोग करता है उसके ऊपर उसको आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। इसलिए देने में तो हम कंजूस हैं ही, लेकिन लेने में कम से कम भगवान का नाम लेने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जब हम 200 लोग के बीच में बैठे हैं तो 200 गुना इसका लाभ हर व्यक्ति को मिल रहा है, क्योंकि हम एक हैं बाकी 199 हैं, जितने भी हैं उतने गुना आपको ऑटोमेटिकली लाभ मिल रहा है। और यहाँ पर बैठे हैं इसलिए 100,000 गुना ऑलरेडी उसका मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, याद है ना आपको। तो 200 × 100,000 कितना हो गया, 2 करोड़। तो 2 करोड़ गुना आपको लाभ मिल रहा है तो हम इतने ठंडे क्यों हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। एक और बार पुकारिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कथा जब चलती है तो अपना जप नहीं करना चाहिए, जप करने के लिए पूरा दिन खाली आपके लिए, बस में कथा के बाद कथा में केवल कथा सुनना चाहिए और जप के समय और कोई कथा नहीं करनी चाहिए हम लोग कथा के समय जप करते हैं और जप के समय कथा करते हैं, सब गड़बड़ है हमारा। हमको बहुत संतों के संग की आवश्यकता है ताकि हम कदम पदम कर हम जब यहाँ वहाँ क्या कहते हैं उसको डिविएट हो जाते हैं ना, यहाँ वहाँ से डिफ्लेक्ट, बार बार हमको हाथ पकड़ के रास्ते पे लाना पड़ता है। सो कोई बच्चा होता है ना, वो जब वो रास्ते पे चल रहा है तो वो 10 बार 10 दिशा में भागता है, हर बार उसको हाथ पकड़ के अपने साथ खींचना पड़ता है। खास करके मेले में जाते हैं ना हम लोग, मेले में, दुनिया के मेले में सब चीज़ सकाचौंध लगकर नज़र आती है, तो उसमें फिर यहाँ वहाँ भागता है मन। तो मैया जो है वो
हाथ छोड़ती नहीं और पकड़ पकड़ के बार बार खींचती रहती। और वो सुबह चला था ना कुत्तों को, देखा आपने, तो कुत्ता क्या करता रहता है हमेशा, उसको कहीं और जाना होता है, मालिक उसको डोरी से इतने जोर से खींचते रहते हैं, उसको और कहीं जाके कुछ करना होता है लेकिन मालिक उसको बार बार अपनी ओर। तो हमारी भी हालत ऐसी है, गुरुदेव हमारे गले पे पट्टा बांधकर चल रहे हैं, हम लोग भाग रहे इधर उधर, वो खींच रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशक नाम्नाम् इति षोडश नाम्नाम् कलिकल्मषनाशनम् नतः परतरोपाया सर्ववेदेषु दृश्यते। सभी वेदों में ढूंढ ढूंढ कर भी इतना श्रेष्ठ उपाय नहीं मिलेगा, किस लिए, कली के दोषों को नष्ट करने वाला इतना श्रेष्ठ उपाय सारे वेदों में ढूंढकर भी नहीं मिलता है, और वो उपाय है 16 अक्षरी महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो श्री गिरिराज के तलहटी में हम लोग बैठे हैं, यानी कि द बॉटम फुट हिल, गिरिराज के छत्र छाए में बैठे हैं। यहाँ पर इतना गिरिराज दर्शन नहीं है इसका, थोड़ा आगे जाएंगे तो धीरे धीरे वो दर्शन आरंभ होता है। भागवतम में लिखा है और संत लोग भी पुकारते हैं कि कब हमें गोवर्धन के तलहटी में बैठने को मिलेगा, निवास करने को मिलेगा, भजन करने को मिलेगा। ये भक्तों की क्या कहते हैं तीव्र आशा है, उनके लिए लक्ष्य की बात है ये, श्री गोवर्धन में परमानेंटली कुछ समय के लिए जैसे भी हो, जितना भी समय मिल रहा है बड़े बड़े भाग्य की बात है। इसलिए मैंने बार बार आपसे हरे कृष्ण मंत्र को बुलवाया, क्योंकि यहाँ पर बैठ के जो भगवान के मंत्रों का, भगवान के नाम का मंत्र जो है उसका उच्चारण करने से भक्तों के संग में उसका अद्भुत दिव्य लाभ है। वो हमको पता ही नहीं, हम गणित, हमारे पास वो मंत्र यंत्र नहीं है जिसको हम मेजरमेंट कर सकते कितना लाभ मिला, कितना जमा हो गया बैंक में, वो नहीं गिन सकते, लेकिन अनंत है इतना मालूम है। तो अपने आप को भाग्यवान समझो और भगवान को भी हृदय से धन्यवाद करो कि भगवान के धाम में पहुंचने के लिए बहुत कठिनाई आती है। आपने देखा ना सुबह किस समय क्या होगा, बहुत बता नहीं सकता कोई, कलयुग में क्या योजना हम बनाते हैं और क्या होता है, हु नोज। तो कितना हमको तीव्रता से भावुक होना चाहिए इस विषय में, वो तो लाइटली लेंगे तो फिर हमसे हाथ से सब छूट जाएगा। इसी प्रकार से सारी बाधाओं को पार करते हुए हमको भगवान के भक्तों के संग में पवित्र स्थान में आने का प्लानिंग जो बनाया है उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। अपने आप साधारण प्रयास से कुछ नहीं होता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है उसको, क्योंकि ये नदी जब एक तरफ से बह रही है तो उस ये जो भक्ति मार्ग है उल्टी तरफ बहने जैसा है, उल्टी तरफ तैरने जैसा है। इट इज़ लाइक स्विमिंग अक्रॉस, स्विमिंग ऑपोजिट द करंट। तो कभी भी आसान होता है क्या, वो कभी भी नहीं आसान होता है, लेकिन जिसको जाना है, जो निश्चय कर चुका है, वो फिर हर प्रयास करेगा, हर प्रयास को करेगा, जितनी बाधाएं आएंगी उसका प्रयास करते रहेगा। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग योजना बनाते हैं लेकिन होता वही है जो कृष्ण भगवान के मन में होता है, जितना आपको देना है उतना ही मिलता है, और जितना मिलता है उसमें आपको संतुष्ट रहना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 1986 में हम लोग सबसे पहले यात्रा में यहाँ पर आए थे, उसमें केवल 22 लोग थे। केवल 22 लोग थे उसमें, और महाराज जी ने हमको स्टेशन पर रिसीव किया था। तो हम गिरिराज की परिक्रमा लगा रहे थे, दिसंबर का महीना था, 1986 का साल था। तो परिक्रमा करते करते हमारी पत्नी जो है वो थोड़ी बीमार हो गई, तो हम लोग जस्ट नया नया विवाह हुआ था हमारा एक महीने के पहले, तो हम लोग इस मंदिर में आके रुक गए। यहीं पर देखा कि थोड़ा सा आसरा है तो हम रुक गए, आकर यात्रा आगे चली गई, बाद में हमने कैचअप किया उसको। लेकिन यहाँ पर जब आए तो यहाँ पर जो पुरोहित थे जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं वो बाबूलाल जी शर्मा थे, जो आज नहीं हैं, जिन्होंने अपने उम्र के 75 साल इस मंदिर में सेवा की है। बहुत बहुत ही अच्छे संत थे वो, और उनकी पत्नी अभी यहाँ पर है, शांति देवी, जो बाहर बैठी थी ना गेट पर, सब उनका दर्शन करना भूलना मत। बहुत ही श्रेष्ठ ब्रजवासी हैं वो, रियल डीप, शी इज़ अ वेरी डीप एंड रियल ट्रू ब्रजवासी, जो कभी भी आपको अपने आप नहीं समझेंगे, कभी बताएगा तो समझेगा। दे लुक सो सिंपल एंड सो ऑर्डिनरी एंड सो इनसिग्निफिकेंट, लेकिन आप जरूर उनका आशीर्वाद लेना हृदय से। तो जब हम यहाँ पर थे तभी बाबूलाल जी ने हमें यहाँ की कथा बताई। उन्होंने, हमारे पास बड़ा डब्बा था उस समय, 2-in-1, पता है आपको 2-in-1 इतना बड़ा होता था वो, ऊपर रेडियो का पट्टी, नीचे कैसेट, वो हमें शादी में गिफ्ट मिला था। तो उसी को लेकर हम लोग यात्रा में घूम रहे थे, को दोरी बांधी थी और गले में लटका के हम बद्रीनाथ तक ले गए थे, उसको रिकॉर्डिंग करते थे उसमें महाराज जी का लेक्चर। तो उसमें हमने रिकॉर्डिंग किया, अभी पता नहीं रिकॉर्डिंग भी कहाँ गया, लेकिन दिमाग में रिकॉर्डिंग उसका फिट है एकदम। तो उन्होंने बताया कि ये जो हिस्सा है गोवर्धन का, इसमें इसको कुसुम वन कहते हैं, कुसुम वन भी कह सकते हैं, पुष्प वन, सुमन वन, फूल वन, उसके कई नाम है इसके। और इसमें चंपा, चमेली, मोगरा और दमनक, ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक फ्लावर्स जो हैं वो यहाँ पर आते थे। और यहाँ पर राधा रानी जो है कभी कृष्ण के लिए फूल बिनती थी, तो कभी सूर्य देव की पूजा के लिए बिनती थी, लेकिन यहाँ पर फूल बिनने का लीला है। दिस प्लेस इज मेंट फॉर पिकिंग अप फ्लावर्स। इसके अंदर एक अशोक वन भी है, थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको अशोक के वृक्ष मिलेंगे बहुत सारे। वो अशोक के वन में नारद मुनि ने एक बार आकर ध्यान किया था, उन्होंने ध्यान में देखा था कि रात को हर एक अशोक वन गोपी का श्रृंगार करके रास में प्रवेश कर रहे हैं। एवरी ट्री इज एंटरिंग रास लीला। तो एकदम धन तंग रह गए वो, जो साधारण जगह नहीं है, दिव्य जगह है, तो वो कुसुम वन के अंदर है। तो एक दिन राधा रानी और सखियां सब यहाँ पर आई पुष्प बिनने के लिए। कोई थक गया तो खड़ा हो सकता है, कोई परहेज नहीं आपके लिए, बट डोंट स्लीप। हाँ, जिनको दीवाल का सहारा मिला है उनको निद्रा देवी बुला रही है, आओ चले आओ, आओ चले आओ, मेरी गोद में चले आओ। तो जिनको गोद में बुलावा आ रहा है उनको आप धक्का देना। तो एक दिन राधा रानी अपनी सखियों के साथ में इस वन में आई, और उनके फूल बिनने का जो क्रिया है उसमें हमको सीखना यह है कि वो मग्नता, जिस मग्नता से वो उसको बिनते हैं, मन में निरंतर वो चिंतन चलता है कि अभी ये फूल मैं किसके लिए निकाल रही हूँ, किस क्या क्या करना है मुझे इसका, कौन सी माला में किस तरह से, तो उस प्रकार से उसको बिनना जाता है। द फ्लावर्स आर पिक्ड अप एज पर द प्लान विथ मेडिटेशन। तो ऐसे वो सब लोग मग्न होकर बहुत गहरी झाड़ियों में जाकर उसको बिन रहे हैं, बहुत मग्न है, उनको समय का पता नहीं क्या नहीं, सब लोग बहुत बिजी अपने पल्लू में ऐसे सब इकट्ठा कर रहे हैं उसको, हाँ अपने लेंगा फरिया को ऐसे बना के रखा है, अपने आप तो डालते जा रहे हैं उसके अंदर। उतने में माली आता है, और माली जो है वो डंडा, ऐसे डंडा लाना भूल गया मैं आज, सब पटक पटक के ऐसे आ रहा है वो जानबूझ के, ऐसे ठाक 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 दूर थी पहले आवाज, सब सखियां सतर्क हो गए, अरे राधा रानी श्री जी देखो माली आ रहा है, भागो यहां से भागो। तो वो भी बहुत डर गई, इधर उधर भागने की कोशिश करने लगी। सब सखियों ने अपना जो पल्लू थे सब वो कांटे में लगे बीच अटके हुए थे सबको निकाल दिया, उसको जितने खुले हड़बड़ में बहुत सारे फूल गिर गए, कुछ सारे बच गए, और उसको लेके भागने लगी, सब लोग भागने लगे, श्री जी चलो चलो ललिता विशाखा चलो चलो, एक एक करके सब भाग निकली। लेकिन राधा रानी जो कैसे ना वो यहाँ का कांटा निकाल दिया तो उधर अटक गया, फिर उधर से निकालने की कोशिश किया तो उधर अटका अटक गया, इस तरह से कुछ फूल गिन रहे उसको उठाने जा रहे तो और कहीं अटक रहा है, इस तरह से वो वहीं रह जाती है। बहुत सारे फूल गिर जाते हैं, बहुत कुछ बच जाते हैं, और लेकिन अटका हुआ जो स्थिति है वो नहीं बदलता है। और उतने में आवाज़ है ना, ठक 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 ठक, एकदम पास में आ जाती हो, माली ऐसे खड़ा हो जाता है, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो? तो वो तुम उसको पसीने आ रहे हैं उसके सर पे डर के मारे, मैं पकड़ी गई आज। तो यहाँ पर आपको फूल बिनने का अधिकार किसने दिया? कोई एक झाड़ आपने बोया यहाँ पर, उस पानी दिया उसको? क्यों आते हो वहां पर आप? ऐसे डांटने लगा तो और कांपने लगी वो, और अचानक उन्होंने एक बड़ा स्माइल दिया, तुरंत रूप बदल दिया, और वो श्याम सुंदर थे, माली बनकर आए थे। वो तब तक डांटते रहे तब तक देखते रहे कि सखियां तो दूर चली गई ना अभी बहुत आउट ऑफ साइट, तब तक उनका डायलॉग चलता रहा, वो देख रहे थे कि दूर जाने दो उनको सबको, फिर अपना रूप प्रकट करेंगे। तो वो जैसे ही उन्हें श्याम सुंदर को देखा, आप हो क्या? मुझे लगा कि क्या होगा आज। तो उन्होंने फिर वो आनंदी हो गई, फिर उन्होंने पूछा कि क्या करते हो रोज फूल बिनने के बाद? तो बोलते हैं कि हम जमुना जी जाते हैं यहाँ से, और जमुना जी में वो धोते हैं फूल को। बोले फिर क्या करते हो? फिर आपके लिए माला बनाते हैं सब लोग मिलकर। बोले चलो जमुना जी जाएंगे। बोले नहीं कैसे जाएंगे? पहले वो पूछते हैं कि आज ये लीला कैसे की आपने? तो उन्होंने कहा कि रोज सबको मिलते हैं आपको, आज अकेले मिलने का दिल हुआ इसलिए सबको लोगों को थोड़ा सा छुट्टी कर दिया आज, लेकिन आपके साथ मैं अकेले कैसे जाऊंगी? सारा ब्रज देख लेगा, घर तक खबर पहुंचेगी, तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो हो गया तो कोई बात नहीं, जमुना जी को ही बुला लेते हैं, इसमें क्या है? व्हाट इज देयर, सब चीज़ें यही ऐसी ही है सब चीज़ें यहाँ पर। अरे गौ लोग धाम को उन्होंने 84 कोस को वहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट किया है, तो जमुना जी को तो उसका एक हिस्सा है। गौ लोग धाम को 84 कोस का जो हिस्सा है उसको उन्होंने यहाँ पर पृथ्वी पर स्थापन किया है। तो उन्होंने फिर अपने पैर से जो होता ना एडी हील हील, उससे एक जोर धक्का दिया जमीन में, तो गड्ढा हो गया उसमें। जमुना जी को आह्वान किया तो जमुना जी आके यहाँ पर सेटल हो गई भगवान की इच्छा से। फिर एकांत में यहाँ पर राधा और कृष्ण ने वो जो मिट्टी में गिरे हुए फूल थे उसको धोया। आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? राधा रानी ने माला बनाई कृष्ण के लिए, है ना? नहीं, उस दिन कृष्ण ने माला बनाई, राधा रानी को बिठाया, आगे बिठाया और उनके बालों को संवारा पहले, ऐसा है। ऐसा वो कंगी लिया हाथ में। कंगी लिया बालों को हाथ में, पहले उलझा भी दिया, अपने सुलझा दिया। फिर सारे सारे बालों को ये देखिए, आप देख रहे हैं ना चित्रपट, ये आगे बिठाया है और उनके बालों को हाथ में लेकर संवार रहे हैं। बालों को संवारने के बाद में उन्हीं फूलों से उनके बालों का श्रृंगार करते हैं। तो ये लीला है। और हम बचपन में देखते हैं ना, हमारी कन्या जब होती है तो माँ उसके बाल बनाती है ना, तो क्या होता है उस समय? झगड़े होते रहते हैं, धीरे से करो, कितना जोर से खींचती हो, सर सीधा रखो, ऊपर मत देखो, इधर उधर क्या देख रहे हो, सीधा रखो। ऐसा होता है ना घर में, फिर क्या, तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर आईना हाथ में लिया है और लड़कियाँ जब उनकी माँ उनका बाल बनाती हैं तो वो अपने को देखती है उसके अंदर, माँ ठीक से बनाओ या आपने टेढ़ा कर दिया उसको दोबारा बनाओ। लेकिन यहाँ पर वो ऐसा आईना रखा है और आईने में श्री कृष्ण का चेहरा देख रहे हैं, क्योंकि वो अभी वो सामने हैं और कृष्ण उनके पीछे हैं, तो दर्शन नहीं हो रहा ना उनको, उनको रहा नहीं जा रहा है उनके दर्शन के बिना। तो आईना पकड़ के वो श्री कृष्ण का चेहरा देख रहे हैं, उनको अपने बालों में सुंदरता कितनी आने वाली है, कितने सुंदर फूल लगने वाले हैं, उसमें कोई रुचि नहीं है। उनका जो रुचि है वो श्री कृष्ण भगवान में है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने जैसी, भक्त का हृदय कैसा होता है। हाँ नो, दिस इज माई कोम, नॉट माँ कोम। कि मेरे बीवी ने मुझे दिया है। हरे कृष्णा। तो राधा रानी कैसे उनको, मतलब स्वत्व जो है ना, स्वत्व सेल्फ, वो है ही नहीं उनका, है पर है ही नहीं, उसकी भावना ही नहीं, उसकी अनुभूति नहीं है, जो भी है सब कृष्ण है। कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, स्वत्व को निकालना और कृष्ण को बिठाना, दैट इज द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। हर चीज में जब हम उस भावना से देखते हैं तो हर चीज अलग दिखाई पड़ती है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। जब स्व निकल जाता है और वहां पर कृष्ण आ जाता है तो हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, वो हमारा जीवन धन्य है। यहाँ पर हो, नरक में हो, स्वर्ग में हो, भगवान के पास हो, भगवान से दूर हो, उसका जीवन धन्य है, क्योंकि कहीं पर भी रहे तो भगवान उनके साथ में है, हृदय में। और हृदय का जो उनका स्थान है वो सबसे उत्कट है। बाहर होने से क्या मतलब है, दुर्योधन भी देख रहा था ना उनको, शकुनी भी देख रहा था उनको, क्या फर्क पड़ा उनको, कंस ने भी देखा था उनको, लेकिन जितना देखा अधिक उतना शत्रुता की भावना बढ़ गई उनकी। दूर था तब तक ठीक था, सामने आया तो और, शिशुपाल का कैसा हुआ, दूर था तब ठीक था, राजसूय यज्ञ का समय आया तो देखो कैसा एक के बाद गाली देते जा रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान का शरीर से हमारे साथ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक हम लोग भक्त नहीं हैं। अर्जुन युधिष्ठिर की भक्ति ऐसे बढ़ रही थी हाँ उनको देखकर, क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित थे। दुर्योधन कंस और शिशुपाल वगैरह थे, उनका द्वेष जो है इतना ऐसा भयंकर अग्नि की तरह भड़क रहा था। इसलिए भगवान का होने से कुछ नहीं होता है, भगवान के लिए भावना होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए और भक्ति होनी चाहिए, तब हर चीज़ को मतलब है। हर चीज़ जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, हर चीज़ को अर्थ है। तो इस तरह से राधा रानी श्री कृष्ण के चेहरे को निहार रही है। तो ये जो बाबूलाल जी शर्मा थे उन्होंने यही सेवा 75 साल तक किया, वन में जाना, फूलों को बिनना, माला बनाना और ठाकुर जी को अर्पण करना। यहाँ पर पहले विग्रह थे, फिर जो चोरी चले गए, अभी गिरिराज शिला है, श्री कृष्ण की गिरिराज शिला है, उनके नीचे राधा रानी की गिरिराज शिला है। उनको उनके राधा रानी के हाथ में आईना है, श्री कृष्ण के एक हाथ में कंघी है, एक हाथ में उनके बाल है, और रोज इतना माता जी इतना सब लोग मिलकर इतना बढ़िया श्रृंगार करते हैं। इस मंदिर का ऐसा इतिहास है कि ये स्कॉटलैंड में बहुत सुंदर मंदिर है हमारा, और स्कॉटलैंड जो इंग्लैंड के नॉर्थ में है, बहुत भयंकर ठंडी पड़ती है वहाँ पर, -25-30, बहुत भयंकर। वहाँ के भक्त लोग यहाँ पर भगवान की इच्छा से अटैच हो गए, उन्होंने यहाँ पर सेवा करना आरंभ किया यथावकाश। देखो ब्रज में ना रहना इतना आसान काम नहीं है, जब हम आते हैं एकदम नाइस एटमॉस्फेयर, सब चुन चुन के हम लोग देखते हैं कौन सा बेस्ट एटमॉस्फेयर है। 15 दिन पहले आइए फिर आपको समझेगा ब्रज क्या चीज़ है, 2 महीने बाद आइए फिर और समझेगा कि ब्रज क्या चीज़ है, 2 महीने के बाद 50 डिग्री हो जाएगा। आपको बाहर से अग्नि जलाने की जरूरत नहीं, रेडीमेड अग्नि आपके पास उपलब्ध होगी। और जनवरी में आइए, दिसंबर में आइए, इतनी ठंड है यहाँ पर, आप बिस्तर से 10 बजे तक उठ ही नहीं पाएंगे, इतने सारे कंबल ओढ़ के रहना पड़ता है। तो चले गए भक्त लोग सब, 2 ही बच गए, एक है पलिंद्री माता जी, दूसरे नित्यानंद महाजन प्रभु, और वो भी 14 साल हो गए उनको यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, 14 ईयर्स। वो लोग सब लोगों को विनती करते हैं कोई आए, कोई आ जाओ सेवा करने के लिए, वो सेवा है। तो हमारे रामचरित प्रभु कहाँ हैं, वो भी यहाँ पर अभी थोड़ा दिन हेल्प करने को आए हैं। तो जब भी किसी को लगेगा अपने जीवन में हाँ मैं आ सकता हूँ यहाँ पर, तो आ जाइए, आपके रहने की व्यवस्था होगी, आपको प्रसाद बहुत उत्कृष्ट दर्जे का प्रसाद मिलेगा, बहुत ढेर सारी सेवा मिलेगी। और सोना कब है ये आपके हाथ में, यू हैव टू डिसाइड व्हेन टू स्लीप, सो मच सर्विस इज देयर। लेकिन उम्मीद है जब ज़्यादा लोग आएंगे तो सेवा भी बढ़ जाएगी और सब लोगों को सोने का अच्छी तरह से जप करने का समय मिलेगा। लेकिन ये लोग बहुत बहुत तपस्वी हैं और हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कभी भी ज़िंदगी में कि हम लोग ये कर सकते हैं, लेकिन वो 14 साल से कर रहे हैं। और उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जब गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य आरना करे हो मन आशा, रोज़ गाते हैं हम लोग सुबह, लेकिन उसको अमल में लाना बहुत मुश्किल है। तो ये लोग उस श्लोक को रोज़ जीते हैं, दे लिव दैट श्लोका एवरी डे। कभी उठते हैं नित्यानंद महाजन प्रभु, किसी को पता नहीं है 2:30 बजे उठते हैं कि 3 बजे उठते हैं, नोबडी नोज। कभी सोते हैं पता नहीं है, ये सारे कभी भी आप मंदिर में आएंगे आपको मंदिर एकदम स्वच्छ मिलेगा, एनी टाइम यू कम, ऐसा नहीं कि आप आ रहे हैं, ये नित्यानंद महाजन प्रभु हैं। वो भी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं इस ऐतिहासिक शैली के बारे में, इसलिए वो बिजी हैं फ़ोटो निकालने में, वीडियो लेने में। कल भी उधर आए थे कैंप में, उनके माता पिता स्कॉटलैंड से आए हैं, उनका 50वां जन्मदिन मनाने के लिए कुछ दिन पहले वो हुआ। तो गुरुमुखा पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य आरना कोरी हो मने आशा, ऐसा ट्रेनिंग है उनका, कोई किंतु परंतु नहीं है। और वो निकल भी जाएंगे यहाँ से तो कोई उनको बोलेगा नहीं क्यों निकल गया है, कहीं भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनका कमिटमेंट है। एक भक्त जो होता है ना उसके वचन की एक कमिटमेंट होती है, वट एवर वर्ड ही गिव्स और शी गिव्स वन हैज़ टू फॉलो। वो कोई भौतिक दुनिया नहीं है, वो बनिया का बिजनेस नहीं है, कुछ भी बोलो और कुछ भी करो ऐसा नहीं है। गुरु का दिया हुआ आज्ञा है और गुरु का दिया हुआ वचन है, उसके लिए जीवन निछावर कर देते हैं, मृत्यु भी आए तो भी उसको निछावर कर देते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो 14 साल से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और गर्मी सर्दी और यहाँ का कैसा वातावरण है, यहाँ पर रोज़ यात्री आते हैं। गिरिराज गोवर्धन जो है ना सबको प्रिय है, लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन उनको बांके बिहारी पता है वृंदावन में और गिरिराज पता है और श्रीजी पता है बरसाने में, ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। गिरिराज में लोग हमेशा आते रहते हैं, हर महीने में 10 दिन का उत्सव होता है, एकादशी टू पूर्णिमा जो 2 बार आती है, परिक्रमाएँ चलती रहती हैं, कुछ दिन रात को चलती है कुछ दिन को चलती है, और कार्तिक महीने में तो दिन रात परिक्रमाएँ चलती हैं, लाखों लोग चलते हैं, सब लोग यहाँ पर आकर रुकते हैं, पानी पीते हैं, कुछ प्रसाद खाते हैं, दिन भर ये लोग उनको बताते रहते हैं कि यहाँ पर फूल बिनने की लीला है, यहाँ पर ऐसा हुआ, यहाँ पर वैसा हुआ, हर व्यक्ति को यहाँ पर सेवा मिलती है फूल बिनने की। सर हावे वर टायर्ड दे आर, लेकिन बताते रहते हैं, कभी भी उनको देखकर आपको लगेगा नहीं कि थके हुए हैं, सोए नहीं हैं, कितने दिन से बीमार है, जैसे कभी आपको लगेगा नहीं उनको देख के। कभी भी आप आइए, आपको ट्राई कीजिए, कभी मित्रों को लेकर आएंगे तो यहाँ पर रुक जाइए, आइए दर्शन कीजिए, तुरंत आएंगे माता जी प्रभु जी आएंगे, आपको बताएंगे सब कुछ, स्टिकर देंगे आपको, सबको दिया ना स्टिकर पेपर देंगे, बताएंगे इसके बारे में, प्रसाद देंगे। और निरपेक्ष भावना से, ऐसा नहीं कि आप डोनेशन देंगे, पंडागिरी नहीं करते, ठाकुर जी का परिचय कराते हैं, उसको तीर्थ पुरोहित कहा गया है। तीर्थ पुरोहित इज अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस यू टू द लॉर्ड एंड लॉर्ड्स होली प्लेसेस, वो तीर्थ पुरोहित को कहा गया। तो ये सही सच्चे हृदय से तीर्थ पुरोहित है। मैं आपको दिलो जान से हिंदी में ये सब कह सकता हूँ, क्योंकि उनको हिंदी समझ में नहीं आती इसलिए वो बेचारे एकदम अनभिज्ञ होकर यहाँ वहाँ डोल रहे हैं नो नो, दे आर डिसाइपल्स ऑफ प्रभुपाद, डिसाइपल्स डिसाइपल्स, हमारे गुरु भाई जैसे हैं वो। तो इन लोगों से समर्पण सीखना चाहिए, इन लोगों से कमिटमेंट को क्या कहते हैं, वचनबद्धता, वचन जिन्होंने जिन्होंने दिया है, प्राण जाई पर वचन न जाई, है ना। हमारी राधा रानी भी रघुकुल की है, बताया ना मैंने आपको, रामचंद्र जी स्कूल में, क्या नहीं बताया, मतलब आप सो रहे थे उस दिन जिस दिन मैंने मैसेज भेजा ना, मैसेज लेक्चर बाय लेक्चर ऑन हिस्ट्री ऑफ बरसाना एंड मध्वाचार्य इन द इवनिंग, उस दिन क्या बताया, बताया ना बरसाने का इतिहास, उसमें दिलीप राजा के वंश में रघु का जन्म हुआ, फिर रघु के वंश में रामचंद्र जी आए, फिर अभयकर्ण आए, फिर रसंग राजा आए जिन्होंने बरसाना बसाया। तो अगर आप राधा रानी के हो तो आप भी रघुवंशी हो। अगर आप राधा रानी के बन जाते हो तो आपको आपको भी रघुवंशी कह सकते हैं। और रघुवंशी का क्या नियम है? प्राण जाई पर वचन न जाई। तो ये सब लोगों को जीवन में अपनाना चाहिए। हाँ, जो भी जो मराठी में तुकाराम महाराज जी क्या कहते हैं, बोले तैसा चाले त्याची वंदा भी पाऊले। हाँ, जो बोलता है व्यक्ति और उसको पालन करता है वो वंदनीय होता है, उसके चरण वंदनीय हो जाते हैं। बाकी तो बोलते सब लोग हैं। हाँ, कौन नहीं बोलता है, सब लोग बोल रहे हैं प्रजल्प, लेकिन जो कहता है उसी को जीवन में चलाता है वही वंदनीय हो जाता है, वही संत हो जाता है। और ये मत समझना कि केवल तुकाराम महाराज संत थे, हम तो भाई क्या है, नहीं, ये संत बनने का जो अपॉर्चुनिटी है ये हम सबको है, सब लोगों को संत बनने का चांस है। अगर आप लोग जो कहें वो करने लगेंगे तो आप भी संत बन सकते हो। इसलिए संत लोग वही कहते हैं जो वो कर सकते हैं, और वो जो कहते हैं उसको करते हैं। हमको भी वही करना चाहिए जो हम बोलते हैं, तो हमारा जीवन धन्य है। जब हम बोलते हैं वही करते हैं तो श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा जो है उसको आकर्षित कर लेते हैं। वी अट्रैक्ट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड राधा रानी। तो ऐसा है, इनके बारे में बहुत प्रेरणा मुझे मिलती है, इसलिए मैं भी इसमें जुड़ा हुआ हूँ। और भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल बरसाना, और भक्ति वेदांत हॉस्पिस वृंदावन, उसके साथ साथ राधा वन बिहारी मंदिर, ये भी हमारा ही प्रोजेक्ट है। ये तीन प्रोजेक्ट हम चलाते हैं। तो राधा गोपीनाथ मंदिर की ओर से इस मंदिर को भी हमने मतलब अपना हम उसके साथ जुड़ गए हैं और थोड़ी थोड़ी प्रेरणा लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए किसी के भी आप मन में कभी भी ऐसा आता है कि चलो ब्रज में रहे, तो एक जगह आपके लिए है। अगर समझो ज़्यादा लोग आ गए तो हम लोग यहाँ पर किराए से भी रूम ले सकते हैं आगे पीछे, और आप लोगों को एकदम कंफर्टेबल करके गिरिराज के तलेटी में सेवा दे सकते हैं। एक और सुंदर प्रोजेक्ट, सब लोग सुनिए ध्यान से, कल मुझे एक मेल आया था, दिसंबर में बात हुई थी, वो ये है कि एक ब्रज फाउंडेशन है जो उनके ट्रस्टी हमारे मित्र हैं, बहुत पुराने ब्रजवासी हैं, उन्होंने बहुत कुंडों का रमेश बाबा जी की प्रेरणा से उद्धार किया है, जीर्णोद्धार किया है, स्पेशल उन्होंने अलग किया है, इन्होंने अलग किया है। तो अभी क्या है कि जीर्णोद्धार करना तो आसान है, बाद में फिर वो मेंटेन कौन करेगा उसको। तो उन्होंने क्या किया है कि जैसे ब्रह्मकुंड है ना, ब्रह्मकुंड उधर वृंदावन में है, ब्रह्मा जी वहाँ पर पश्चाताप में रोए थे, तो उसका एक बहुत गहरा कुंड बना अश्रुओं से, तो उसका उन्होंने बहुत सुंदर, इतना सुंदर जीर्णोद्धार किया है कि आप देखते रह जाएंगे उसको। कभी आना वृंदावन में, तो हमारी हॉस्पिटल की वार्षिक यात्रा इस साल वृंदावन में है 7 दिन के लिए, तो आपको ज़रूर दिखाएंगे उसको। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अभी उसी के साथ साथ में उसी प्रोजेक्ट के अंदर एक 1 बेडरूम हॉल का रहने की व्यवस्था भी कर दी है उधर, तो किचन है और एक कमरा है। और उन्हें ऐसा विनती किया है जो प्रभुगण हैं, सिंगल मैन और लाइक रिटायर्ड वॉट एवर, तो प्रभुगण वहाँ पर फ्री रह सकते हैं, कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी, फ्री में आपको ब्रजवास मिलेगा। और वहाँ पर बैठकर जो भी यात्री आते हैं उनको आपको उस धाम के बारे में बताना है, कथा बतानी है, उनको प्रेरणा देना है, जैसे आप आए तो बिठा कर उनको धाम के विषय में बताना है और उसका रक्षा करना है, कोई उसको तोड़ फोड़ ना दे, गंदगी ना फैलाएं, प्लास्टिक की बोतल ना डालें, और अपना अपना भोजन अपना बनाएं और खाएं। आपको रहने का ब्रजवास मिल रहा है फ्री में, कोई रेंट नहीं आपके लिए। तो ये भी प्रोजेक्ट है, मुझे पता नहीं कौन उसमें फिट होगा लेकिन कीप इन माइंड, हाँ, इसको लगेगा अभी अभी क्या हो गया, अकेले रह गए अभी ज़िंदगी में, कुछ करना है, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस है, तो यहाँ पर आकर निवास कर सकते हैं। ब्रजवास के कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स है, अभी कम से कम 6 जगह उनकी घर के साथ रेडी है। ओके, तो अभी यहाँ की लीला बताओ, थोड़ी बताते हैं आपको। सब लोग जग रहे हैं ना, फूल बिन रहे कि सो रहे हैं? सब लोगों को फूल बिनना है यहाँ पर। तो यहाँ पर कई लीलाएं हैं। हाँ, ये जो छतरी है ना, ये जयपुर के राजाओं ने बनाई। कुंड तो ऐतिहासिक है, छतरी जयपुर के राजाओं ने बनाई है, इसको हवा महल कहते हैं। जैसे कि वो गर्मी के मौसम में ना चारों तरफ से हवा बहती है, तो राजा रानी अलग अलग छतरी में बैठ जाते हैं और आनंद लेते हैं ठंडी हवा का जो कुंड से आता है। तो कुसुम सरोवर सुंदर जो है वो छतरी की वजह से नहीं है, वो अपने आप में सुंदर है। लोग छतरी को देखते हैं लेकिन कुंड अपने आप में दिव्य है, ऐसे भी हमने सुना है। मुझे पूरा उसका प्रमाण पता नहीं है कि सनातन गोस्वामी ने जिसको वो पारसमणि बोला था ना, फेंक दो फेंक के आ जाओ, वो इसी में फेंका गया है। और कहते हैं कुसुम सरोवर का जो गहराई है वो पाताल लोक तक है। हरी बोल। तो यहाँ पर एक दिव्य कमल है इसके बीच में जो किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। वो दिव्य कमल हम लोग गाते हैं ना, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। तो इसमें आगे वर्णन आता है कि उसमें बीच में एक सुंदर कमल है, उसमें बहुत विशाल बैठने की जगह है। इसको इंग्लिश में वर्ल ऑफ लोटस कहते हैं, बीच की जगह, बाद में पंखुड़ियाँ पैदा होती। तो उसमें रत्न सिंहासन पर राधा और कृष्ण विराजमान है, बहुत सुंदर अवस्था में वहाँ पर श्रृंगार करके बैठे हुए हैं। सब लोग मन में चिंतन करना इस बात का। और जो पंखुड़ियाँ हैं गुलाब की, उसमें प्रमुख 8 पंखुड़ियाँ हैं, उसमें अष्ट सखियाँ खड़ी हैं, कुछ बैठी हैं कुछ खड़ी हैं, किसी के हाथ में वाद्य है, किसी के हाथ में फूल है, किसी के हाथ में अलग अलग सेवा के व्यंजन है, और वो राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। बड़ा दिव्य दृश्य है ये। गुरुदेव कहते हैं कि जब भी जीवन में संकट आ जाए, कष्ट आ जाए, पीड़ा आ जाए, परेशानी आ जाए, तो इस दृश्य को चिंतन करना, क्योंकि ये परम सत्य है, ये कभी बदलता नहीं है। राधा कृष्ण रत्न सिंहासन पर बैठे हुए हैं, सखियाँ उनकी सेवा कर रही हैं, गीत गा रही हैं। वैसे ही दृश्य बंसीवट के नीचे भी वृंदावन में है, वहाँ पर भी रत्न सिंहासन है, वहाँ पर भी सखियाँ राधा रानी और श्याम सुंदर की सिंहासन पर बैठे हुए सेवा कर रहे हैं। इसलिए चिंता मत करना, जिस स्थिति में हम गुजर रहे हैं वो एक दिन समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये जो स्थिति है, ये दृश्य जो है, वो समाप्त नहीं होता। दिस इज इटर्नल इटर्नल सीन दैट यू कैन एन्जॉय ऑलवेज, और आपके दुखों को आप नष्ट कर सकते हो। तो फिर उसके बाद में कमल को हजारों लाखों करोड़ों पंखुड़ियाँ हैं, उसमें सारी सखियाँ अपने अपने स्थान पर खड़ी हैं, और सब कृष्ण भगवान राधा रानी की सेवा कर रहे हैं। बहुत सुंदर सुयोजित योजना है, पूरी कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड परफेक्टली इन अ डिवाइन वे। तो राधा रानी का जब जन्म हुआ था रावल में, तो राधा रानी को देखने के लिए नारद मुनि आए थे। नारद मुनि ने गणित किया था कि यही ज्योग्राफिकल मेरा चार्ट जो है इसी जगह पर आए हूँ, जन्म हुआ है राधा रानी का। तो वहाँ पर राधा रानी ने उनको दर्शन दिया, सबको दूर कर दिया, और राधा रानी ने उनको दर्शन दिया, तो नारद मुनि बेहोश हो गए। और तब नारद मुनि को राधा रानी ने 16 साल की उम्र का किशोर अवस्था का दर्शन दिया। फिर वो उन्होंने कहा कि मुझे आपको अष्ट सखियों के साथ दर्शन करना है। तो उन्होंने कहा कि आप कुसुम सरोवर चले जाओ। तो नारद मुनि यहाँ पर आनंद से विभोर होकर नाचते हुए, डोलते हुए, गिरते हुए, उठते हुए, हाँ, बेहोश होते हुए, होश में आते हुए, ऐसे रोलिंग ऑन द ग्राउंड, लोटपोट होते हुए वो यहाँ तक पहुँचे। तो यहाँ पर आने के बाद में वृंदा देवी और माधवी गोपी ने उनको दक्षिण कोने में स्नान कराया, और दक्षिण कोने में स्नान कराने के बाद में उनको गोपी शरीर प्राप्त हो गया। ऐसी कई प्रकार की लीला है नारद मुनि की। तो गोपी शरीर को प्राप्त करने के बाद में उन दोनों ने उनका श्रृंगार किया, और नारद या गोपी को हाथ पकड़कर वो पूरे बाहर से उनको वो जो कमल का कमलाकार जो योजना थी उसके अंदर ले गए उनको, और उनके हाथ में चामर दिया, और उन्होंने चामर सेवा किया उनका, राधा और कृष्ण का। चामर डुलाए कबे हेरी बो मुख चंद्र, चामर की एक विशेषता है, ऐसे करेंगे दर्शन, ऐसे करेंगे दर्शन, ऐसे करेंगे दर्शन, चामर हिल रहा है, नज़र कहाँ पर है, राधा और कृष्ण पर। उसके बाद में फिर उन्होंने, नारद मुनि ने उनको आदेश दिया राधारानी ने उनको आदेश दिया कि आप नारद पंचारत सूत्र लिखो, जिसमें भगवान के विग्रहों की पूजा कैसे करनी होती है वो आप लिखो सब लोगों के लिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो शाप है, दक्ष राजा ने मुझे शाप दिया है कि 3 दिन के ऊपर मैं एक जगह पर रह नहीं सकता हूँ। तो राधारानी ने कहा कि वो जो शाप है वो जन्म मृत्यु वाले भौतिक जगत में लागू है। दिस इज़ माई होम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इसमें दक्ष राजा का शाप लागू नहीं है, आप चाहे जितने दिन यहाँ रह सकते हो, मजे से रहो, भजन करो आराम से। नारद मुनि बड़े खुश हो गए और यहाँ से इस दिशा में गए, इस दिशा में, इस दिशा में प्रभु जी खड़े हैं, इस दिशा में गए। वहाँ पर 1 किलोमीटर के आगे लेफ्ट साइड में नारद कुंड है, वहाँ पर उन्होंने निवास किया है, वहाँ पर तपस्या की है, वहाँ पर नारद पंचारत्र सूत्र का लेखन भी किया है। एक लीला और भी ऐसी है कि नारद मुनि ने इच्छा प्रकट की थी, क्योंकि उन्होंने सुना था कि गोपियाँ बड़े विचित्र रूप से भगवान के साथ में लीला करती हैं, और वो प्राइवेट है, बहुत किसी को एंट्री नहीं है, केवल गोपी ही उसमें प्रवेश कर सकती है। तो मन में तीव्र इच्छा हुई उनकी गोपी बनने की। तो ऐसे भी वर्णन आता है कि वो इस जगह आए, उन्होंने यहाँ पर तपस्या किया है, बहुत कर रही तपस्या। तो फिर एक गोपी ने उनको दर्शन दिया और वो गोपी यहाँ पर उनको ले आई, इन्होंने उनको स्नान करा के फिर गोपी बनाया और फिर वो सेवा किया भगवान को, ऐसी भी कथा है यहाँ की। दूसरी कथा बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ का ये जो क्षेत्र है ना, कभी आप यहाँ पर आने का और रहने का विचार करोगे तो ये लीलाएँ आपको पता होना चाहिए कितनी उत्कट जगह है ये, सच इंटेंस प्लेस। उद्धव जी ने यहाँ पर आकर तपस्या किया है, इसके एग्जैक्टली पीछे उद्धव कुंड है, जहाँ पर वो कृष्ण का संदेश लेकर आए थे ना, और सब देखा उन्होंने, कुछ सोच के आए थे वो, लेकिन सब फेल हो गया उनका, जो भी प्लान सोच कर आए थे कुछ भी नहीं कर पाए, उनसे ही सीख गए बहुत सारी चीज़ें, उनको कुछ सिखाने आए थे लेकिन समझ में आया कि ये तो बहुत ऊंची चीज़ है। तो उन्होंने कृष्ण के पास लौट गए वो अपना सारा मैसेज लेकर, और कहा मैं जा रहा हूँ वापस। मैं कहाँ जा रहे हो? मैं ब्रज में जाना चाहता हूँ और वहाँ पर मैं तपस्या करूँगा, तो तपस्या करके मैं तिरण का पत्ता बनना चाहता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वापस आए यहाँ पर और उन्होंने उद्धव कुंड में बहुत बड़ी तपस्या की है। दुनिया में कोई भी तपस्या प्रमोशन के लिए करता है, डिमोशन के लिए नहीं करता है, धनवान से गरीब बनने के लिए कोई तपस्या नहीं करता है, हाँ मैनेजर से चपरासी बनने के लिए कोई तपस्या नहीं करता है, हर एक व्यक्ति तपस्या करता है नीचे से ऊपर जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। लेकिन उद्धव जी सबसे श्रेष्ठ और सबसे उच्च स्थान पर थे, भगवान के इतने निकट थे कि कोई सोच नहीं सकता था कि इनके भी और निकट कोई जा सकता है भगवान से, इतने निकट थे वो। भाई थे उनके, चचेरे सेनापति थे, सलाहकार थे, काउंसलर थे, बृहस्पति के शिष्य थे, विद्वान थे, भगवान के सखा थे, भगवान के मंत्री थे, भगवान के दरबार के उनके विशेष व्यक्ति थे, घर पे जाकर उनके शयन गृह में खाते थे, पीते थे, सोते थे, मजाक करते थे, शिकार खेलते थे, क्या नहीं करते थे, ऐसे दो शरीर एक आत्मा, ऐसा थी उनकी स्थिति। तो जब वो आए वृंदावन में इधर मिलने के लिए, तो गोपियाँ सोचती थी कितना भाग्यवान है ये, हमारे प्रिय श्याम सुंदर के कितने निकट रहता है, सो क्लोज ही इज, हम लोग इतने दूर तड़प रहे हैं, इनको देखिए कितने पास है उनके, वो कितने भाग्यवान जीव है। और एक बात है उनकी, उनका रंग भी कृष्ण जैसा है, ही हैज कलर ऑफ कृष्णा ओनली। तो कृष्ण भगवान ने जानबूझ के उनको अपना मुकुट दिया पहनने के लिए, अपना रथ दिया, ताकि उनको पता नहीं, उनका मुझे पता नहीं रहस्य क्या था उसका। जब वो आए यहाँ पर तो भाग के गोपियाँ गई, कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए, जरा पास में जाकर देखा तो पता चला कि कृष्ण ही है, कोई और है, तो फिर थोड़े संकोच में आए वो। तो उन्होंने सब कुछ देखा उनका, बड़ी लंबी कहानी है, उसमें नहीं जाएंगे अभी। तो उद्धव जी ने यहाँ पर तपस्या की है इस जगह पर, और ये को जो आपको दिख रहा है क्षत्रिया, इसकी बिल्कुल पीछे उद्धव कुंड है, और वहाँ पर तपस्या करने के बाद वो यहाँ पर गुलमलता बने हुए हैं। गुलमलता एक प्रकार का घास का पत्ता होता है, वो यहाँ पर माता जी कभी दिखाते हैं मुझे, अभी नहीं मिलते इतने, लेकिन है यहाँ पर गुलमलता। क्यों बने वो गुलमलता? क्योंकि उन्होंने देखा कि उनको अभी बिना गोपियों के चरण की रज प्राप्त किए उनका जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है, इतने पास भगवान में भगवान के होने से कोई मतलब नहीं है, जो प्रेम उनके पास में है तो मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है, इतने दूर रहकर भी इतना प्रेम है उनके मन में, मुझे वो चाहिए प्रेम, और इनके चरणों की धूल प्राप्त किए बिना तो वो नहीं मिल सकता है। और वो इतनी सीधी साधी सिंपल औरतें हैं, वो अपने चरणों की धूल मुझ जैसे अधिकारी को थोड़ा देंगे। मैं तो द्वारका का अधिकारी हूँ ना, मैं ऐसे ऑफिशियल पोस्ट में आया हूँ यहाँ पर, तो मैं उनको संकोचित भी नहीं करना चाहता। मैं वो तृण का पत्ता बनना चाहता हूँ जिस पर वो आराम से चलते हैं, उनको कोई संकोच नहीं चलने में, दे हैव नो हेजिटेशन। तो मैं बिना संकोच से उनके लिए, मैं मतलब उनके चरण की रोज प्राप्त करने के लिए मैं तृण का पत्ता बनूंगा और फिर मैं उनके चरणों की रज रोज प्राप्त करते रहूंगा, फिर ये प्रेम का रहस्य जो है वो मुझे समझ में आएगा, ऐसा उनका भाव है। बहुत कठिन बात है ना ये, कृष्ण का संग छोड़कर यहां पर आए। फिर जब कृष्ण अंतर्धान हो गए तो उन्होंने उद्धव जी को भी पहले कहा था, फिर उस समय के राजा परीक्षित को भी कहा था, और उनके प्रपोत्र जो थे वज्रनाभ, इनको भी कह के रखा था कि जब मैं अंतर्धान हो जाऊंगा तो मेरी रानियां बहुत व्याकुल हो जाएंगी, बहुत रोएंगी वो, तो उनको सांत्वना के लिए देने के लिए आप ब्रज में लेके जाना और जमुना जी से उनको मिला देना, क्योंकि जमुना जी भी भगवान की एक पत्नी है। तो वज्रनाभ और परीक्षित उनको लेकर यहाँ पर आते हैं, जमुना जी उछाल रही है बहुत अच्छे अच्छे लहरों के साथ आनंद से। तो कहते तुम हमारे सौतन हो, हमारी को वाइफ हो, हम सब लोग दुखी हैं और आप खुश कैसे हैं? तो कहते हैं ब्रजवासी होने का जो रहस्य है उसके वजह से हम लोग यहाँ पर इस तरह से हैं। तो हमारे पति देव तो चले गए हैं लेकिन फिर भी राधा रानी के संग में हम लोग हैं, इसलिए हमें दुख होने पर भी आनंद का अनुभव होता है उनके विरह में। तो रानियों को समझ में नहीं आया तो ये कैसे हो सकता है, वो तो रो रही है ना, उनके पति चले गए तो रो रही है वो। उन्होंने कहा कि आप कुसुम सरोवर जाइए, वहाँ उद्धव जी आपको ये सारा रहस्य जो है उसका भेद करेंगे। तो राजा परीक्षित और वज्रनाभ उनको कुसुम सरोवर लेकर आए और यहाँ पर रानियों ने बड़ा दिव्य प्रेम संकीर्तन किया है, दे डिड वेरी लविंग हरिनाम संकीर्तन। सोच सकते हैं आप, जो भगवान की पत्नियाँ हैं, पटरानियां हैं, 16108 इतने दिव्य भक्त हैं भगवान के, गौलोक के साथी हैं उनके, नित्य सिद्ध जीव हैं, उन्होंने यहाँ पर आकर हरिनाम संकीर्तन किया है। उनके प्रेम विभोर हरिनाम संकीर्तन में उद्धव जी गुलमलता के रूप से बाहर आकर व्यक्ति रूप बने, ही बिकेम उद्धव अगेन। हरिनाम के अंदर ये शक्ति होती है हाँ, हर चीज के रहस्य को प्रकट करने की। हरिनाम क्या बज रहा है, हरिनाम के अंदर ऐसी शक्ति होती है जो सारे रहस्य को जीवन के भेद कर सकती है। जो भी अनुभूतियां आपको आवश्यक है, जो आपको चाहिए, वो सब आपको प्राप्त करा सकती है। हैव फेथ। हम बोलेंगे हम और कुछ करना चाहते हैं, वो पेड़ को 3 बार प्रदक्षिणा करेंगे, फिर शनिवार को उपवास करेंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा हमारे मन में थोड़ा कर्मकांड की हमेशा बोलते ना कीड़ा रहता है हमेशा, वो हम कुछ ऐसा बोलेंगे ना छोड़ो सब कुछ हरिनाम करो तो हमको विश्वास नहीं होता, नहीं कुछ कोई बाबा बोल रहा है कोई शनिवार को आ जाओ नासिक में, उधर एक पेड़ है उधर 7 बार प्रदक्षिणा करो और उसको ऐसा ऐसा अर्पण करो, फिर ये मत खाओ वो मत खाओ, खाली तेल पीना है वगैरह वगैरह, तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि भाई कुछ दम है इसके अंदर। इतना कॉम्प्लिकेटेड उपाय बताया तो मतलब बहुत बड़ा बाबा है वो, कोई बताएगा साहब छोड़ो इसको हरिनाम लो, बोले क्या फालतू बात कर रहे हैं। ये हमारी स्थिति है, भक्तों की भी ऐसी स्थिति है कि तब आपको पता चलेगा कि हमारी स्थिति क्या है, जब आपके घर में किसी को बड़ी बीमारी हो जाएगी, असाध्य बीमारी हो जाएगी, 50 लोग आपको सलाह दे रहे हैं ये करो वो करो वो करो, वो सब में ही आ जाता है, प्रभु जी वो आपकी बेटी को लेकर वो तो नासिक में जाओ, अरे उधर जयपुर में जाओ, वहाँ पर एक ऐसा बाबा है वो देखने से ठीक कर देता है, ऐसे 50 सदस्य आ जाते हैं सीरियस, हाँ देर लाइक रियली सीरियस, और वो चाहते भी कि आपको वो करना है जो मैं बता रहा हूँ, दे ऑल्सो एक्सपेक्ट यू टू परफॉर्म दैट। बट जो जिस व्यक्ति, हम सब लोगों को ये जरूरी है कि हमने भगवान की शरण अगर ले ली है तो उसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेकिंग शेल्टर, ही विल टेक केयर। बाकी जो जायज उपाय है वो सब करते रहने चाहिए, लेकिन इस समय वो सारे उपाय हमारे सामने आ जाते हैं, हर प्रकार के दिव्य कॉम्प्लिकेटेड मिस्टीरियस रहस्यमय उपाय सामने आ जाते हैं, ये विभूति पियो, ये करो वो करो, उसका जल पियो, उसको अर्पण करो देवी को। तो ये बात कहाँ से निकली, हरिनाम संकीर्तन का रहस्य भेद करने के विषय से। तो हम सबको हरिनाम पर सहारा विश्वास होना चाहिए पूरा, कि एनेची औषधि नाशो बारो लागी, हरिनाम महामंत्र लाओ तुम्हें मागी। जितनी भी रोग है दुनिया में, जितनी भी व्याधियां हैं, वो सबकी एक औषधि है हरिनाम संकीर्तन। फिर आप पूछेंगे अरे तो आपने हॉस्पिटल को खोला है, तुरंत प्रश्न पूछेंगे अरे आप तो ट्रस्टी हो हॉस्पिटल के, हॉस्पिटल चला रहे हो, वो केवल लोगों को भगवान के चरणों में खींचने का एक बहाना है, क्योंकि वैसे भी कहीं कहीं जाएंगे वो दवा लेने के लिए, वो हमारे पास आएंगे तो उनको हम भगवान का परिचय भी करा देंगे। बीमार सबको पड़ना है, इलाज सबको करना है, वो करेंगे भी, वो सबको थोड़ी भगवान के नाम पर श्रद्धा है, चलो हॉस्पिटल बंद अभी हरिनाम संकीर्तन, ऐसा नहीं होता ना। तो यहाँ वहाँ भटकने के बदले में हमारे पास आएंगे तो हमने व्रत बना के रखा है, उधर हरिनाम चला के रखा है, वो प्रसाद दे रहे हैं, उनको उत्सव मना रहे हैं, 50 तरीके से उनको भगवान की भक्ति में लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे हॉस्पिटल चलाने का पर्पज़ अलग है। एनी वेज, तो यहाँ पर रानियों ने संकीर्तन करके उद्धव जी को प्रकट कराया। फिर आगे के बाद ध्यान से सुनना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उद्धव जी ने उनको 30 दिन तक श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई इसी जगह पर, दो बैठकें आगे जाकर 30 दिन तक भागवत सुनाया उन्होंने, क्योंकि उनको कोई टाइम प्रेशर नहीं था सुखदेव जैसा कि 7 दिन में मरना है, 7 दिन में फिनिश करना, ऐसा कुछ नहीं था, उतना बहुत समय भी नहीं था, लेकिन 7 दिन का वगैरह बंधन नहीं था उनके पास। तो उन्होंने 30 दिन तक श्रीमद् भागवत को बड़े प्रेम से सुनाया, और वर्णन ऐसे आता है कि अभी देखो वक्ता कितने श्रेष्ठ हैं उद्धव जी, सोचिए आप, भगवान कितने निकट रह चुके, इतने नम्र भाव में हैं, गुलबलता बनने के लिए तपस्या किया उन्होंने, यहाँ पर यहीं पर निवास करते हैं गुलबलता के रूप में, गोपियों के चरणों की रज हमेशा अपने सर पर धारण किए हुए हैं, ऐसे व्यक्ति भागवत कथा कर रहे हैं। जैसे ही भागवत शुरू हुआ तुरंत कृष्ण के सारी रानियों का जो उद्वेग था, जो दुख था, वो सब खत्म हो गया। बताइए क्यों, इतना देर से रोते रोते आ रहे थे हस्तिनापुर से यहां तक, कितने किलोमीटर, भागवत शुरू होते ही सारे दुख एक साथ समाप्त हो गए उनको एक ही साथ में। क्यों? यस, श्रीमद् भागवतम स्वयं कृष्ण है, कृष्ण जब अंतर्धान हो गए तो उन्होंने इस दुनिया के क्षितिज पर, यानी कि ऑन द होराइजन ऑफ दिस वर्ल्ड ही प्रेजेंटेड श्रीमद् भागवतम। तो प्रथम श्लोक से ही श्रीमद् भागवत के श्रवण करते ही उनको श्री कृष्ण के सान्निध्य का अनुभव हुआ, दे एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड विद देम, सारे दुख उनके नष्ट हो गए। तो उस आनंदमयी अवस्था में जब श्री कृष्ण का पुनः उनको सान्निध्य का अनुभव हो रहा है, उसमें उन्होंने पूरा भागवत सुना, सब कथाएं सुनी। जब दशम स्कंद आया तो जब उनका वर्णन शुरू हुआ खुद का उनका, तो उन्होंने अपने आप को उसमें देखा, दिव्य दृश्य देखा, वो सुन भी रहे हैं और अपने आप को भी देख, जैसे हम लोग जो ड्रामा करते हैं उसका रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर उसको हम देखते हैं खुद वीडियो, तो हमको ही देखते हैं ना, हम लोग बैठे हैं हमको दिख रहे हैं। तो उस तरह से वो खुद वो जो दृश्य जो है, जैसे जब कोई उद्धव जैसे महान भक्त जब भागवत कहते हैं ना, तो आंखों के सामने सारा नज़ारा ऐसे रनिंग प्रकट होता है, इट्स लाइक अ रनिंग वीडियो इन फ्रंट ऑफ योर आइज। तो वो सब देख रहे थे, वो सुन भी रहे थे और देख भी रहे थे, सब हो रहा है, उसमें अपने आप को भी देख रहे हैं। और उसके बाद में जब भागवत समाप्त होता है तो वो अपना रूप जो वो देख रहे थे उसमें वो विलीन हो गए और गोलोक धाम चले गए। तो इसी जगह पर सारी भगवान की रानियां जो हैं वो भी अंतर्धान हो गई हैं और भगवत धाम चले गए। बहुत उत्कट जगह है, यू हैव टू प्रे हियर इंटेंसली, यू हैव टू प्रे। हरिनाम की महिमा यहाँ पर प्रकट हुई है, श्रीमद् भागवत की महिमा भी यहाँ प्रकट हुई है। यहीं पर अष्टावक्र मुनि ने भी तपस्या किया है। अष्टावक्र मुनि ऐसे मुनि हैं जिनके शरीर में 8 जगह पर वक्र है, बैंड है, वो ऐसे विचित्र रूप से चलते हैं। तो उन्होंने भी यहाँ तपस्या किया है, बहुत सुंदर लीला यहाँ पर, बहुत सुंदर। तो हम लोगों को यहाँ पर जो समय भगवान ने दिया है उसके लिए बार बार अनंत बार धन्यवाद करना चाहिए, थैंक यू माय लॉर्ड कि आपने हमें यहाँ पर लाया इस सुंदर जगह पर। ये जल का आप आचमन कीजिए अगर जाने का परमिशन है तो, नहीं परमिशन है तो मन में कर लीजिए, थोड़ी देर बैठिए, चिंतन कीजिए, याद कीजिए आपने क्या क्या सुना है, और अपने लिए प्रार्थना कीजिए कि ये जीवन जो है वो भगवान के भक्तों के चरणों की धूल प्राप्त करने के लिए है, जिसके माध्यम से हमको भगवान की भक्ति का रहस्य प्राप्त हो सकता है, हम समझ सकते हैं उसको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो 5 मिनट बैठिए आप यहाँ पर और चिंतन कीजिए, भगवान को धन्यवाद कीजिए, उद्धव जी को याद कीजिए, एक और रहस्य की बात यहाँ पर है, यहाँ पर बलराम जी का मंदिर है और इसके आगे कहीं बलराम जी का मंदिर नहीं है। इसका कारण यह है कि यहाँ से राधा कुंड घेरा आरंभ होता है, राधा कुंड क्षेत्र जो है इलाका वो शुरू होता है। तो कृष्ण के श्रृंगार रस के प्रति जो उनको आदर है उसके कारण बलराम जी इसके आगे नहीं जाते हैं, ये डजन गो टू राधा कुंड। तो यहीं से वो लास्ट उनकी बैठक है यहाँ पर, यहीं से वो देखते हैं लीलाओं को, लेकिन खुद नहीं जाते हैं। देखो बड़े भाई हैं भगवान के, हाँ बड़े भाई हैं भगवान के। चलो एक और लीला आपको सुनाता हूँ उसकी, कि बड़े भाई होने पर भी कितनी नम्रता है उनके अंदर श्री कृष्ण के प्रति। श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर केवल श्रृंगार लीला करते हैं, राधा कुंड में क्या है, राधा कुंड इज अ वेरी इंटेंस एंड मोस्ट इंटेंस एंड मोस्ट इंटेंस प्लेस, जहाँ पर भगवान कृष्ण प्रेम राधा प्रेम को ऐसे बांटते हैं कोई योग्यता ना देखते हुए, और वह हमेशा श्रृंगार लीलाएँ चलती रहती हैं। भगवान यहाँ पर चेस खेलते हैं, हाँ सारी पाठ यानी कि चौसर खेलते हैं, सब गेम में भगवान राधा रानी को हमेशा हरा देते हैं। बहुत उद्दंड है ना वो, वेरी ओवरवेलमिंग, वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी, थोड़ा गोपियों को परेशान करते हैं। तो फिर जब राधा कुंड में आता है तो वो सारी पाठ खेलने बैठते हैं चौसर, तो सारी पाठ के गेम में वो हारते रहते हैं हमेशा, कॉन्स्टेंटली डिफीटेड बाय राधा रानी। तो श्रृंगार की लीला में बलराम जी वहाँ पर सम्मिलित नहीं होना चाहते, इसलिए वो यहाँ पर बैठे। तो उधर आप जाएंगे, आगे हम जाएंगे आज उधर, लेकिन उसका दर्शन कर पाएंगे पता नहीं, वो थोड़ा दूर है वो। तो वो है ढोका दाऊ जी, तो वो एक गुलाबी रंग का मंदिर एकदम गोवर्धन के ऊपर है वो। तो भगवान ने तो शरद ऋतु में जो रास रचाया था वो तो वृंदावन में बंसीवट के नीचे रचाया ना उन्होंने, वहाँ से उनको बुलाया। तो यहाँ पर वसंत ऋतु में जब उन्होंने वसंत पूर्णिमा के दिन जब रास रचाया पहली बार, तो इतना सुंदर दृश्य था वो, इतना दिव्य आनंद वहाँ बरस रहा था कि देवता लोग भी आ गए आकाश में, आकर्षित हो गए। कोई फूल बरसा रहा है, कोई वहाँ पर वाद्य बजा रहा है, कोई सितार, कोई वायलिन, कोई नृत्य कर रहा है, उनका ताल पकड़ने का कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई ताल पकड़ नहीं पाता है, उनको क्या समझ में आ रहा है कौन सा ताल में गा रहे हैं, कौन से सुर में गा रहे हैं, कौन से ताल में नाच रहे हैं, कुछ भी देवताओं को समझ में आ, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अकम्पनीमेंट कोशिश कर रहे हैं, कहीं और दिशा में जा रहे हैं। तो चंद्रमा जो है बहुत एकदम भाव विभोर हो जाते हैं चंद्रमा ये सब देखते हुए। तो चंद्रमा के पास समुद्र मंथन का कुछ अमृत जो है ना वो स्टॉक में रखा हुआ है, इस इंटरेस्टेड विथ हिम। तो बड़े भाव में आकर वो कुछ अमृत के दाने उस कुंड में डाल देते हैं। अभी वो कुंड कैसे बन गया, जब वे नृत्य करते हैं तो उनके शरीर से दिव्य स्वेद बिंदु निकलते हैं, हम उसको पसीना नहीं कह सकते हैं, वो दिव्य स्वेद बिंदु सुगंधित होते हैं, बड़ा उनका प्रकट होने पर आनंद प्रकट होता है। तो वो दिव्य स्वेद बिंदु से इकट्ठा होकर एक सरोवर बना, और वो सरोवर को देखकर उसका तेज देखकर चंद्रमा आकर्षित हो गई, और उन्होंने उसमें कुछ अमृत के बूंद डाले। फिर नृत्य आगे बढ़ता रहा, तो चंद्रमा इतने भावयोर हो गए, खुद उस कुंड में गए और पिघल गए कुंड में, वो एक रूप हो गए कुंड से। तो ये जब चल रहा है दिव्य, हाँ इधर इंद्र ऊपर से आ गए, उन्होंने नीचे आकर एक शिला लिया, उसको बजाना शुरू किया, तो कहते हैं बाजनी शिला, वो अभी भी वहाँ पर है, वो पेटा गाँव में सब कुछ ये। तो ये सब दृश्य जो है जब हो रहा था तो बलराम जी अचानक वहाँ पर आ गए, उनको दिखाई पड़ा दूर से, वो गोवर्धन के ऊपर थे और ये गोवर्धन के पास में लेकिन थोड़ा दूर है। तो देखा अरे कितनी सुंदर लीला हो रही है, तो उनको बड़ा आनंद आने लगा। लेकिन उनके मैंने विचार आया कि अगर इनको दिखाई पड़ा तो बड़े भाई होने के नाते कृष्ण को संकोच होगा और वो सब बंद कर देगा, ये विल स्टॉप इट। तो उन्होंने क्या किया, वो झुक गए, दंडवत प्रणाम के स्थिति में झुक गए वो, इसको हम वो राजस्थानी भाषा में क्या ढोक बोलते हैं, ढोक देना है ना, तो वो ढोक की अवस्था में आ गए और वहाँ से उसको देखने लगे छुप छुप के, और इतना आनंद आया कि बहुत आनंद होने के बाद में 8 प्रकार के परिणाम शरीर में दिखाई देते हैं। उसका प्रकार एक प्रकार है स्तंभ, यानी कि हमारा शरीर जो है वो एकदम कड़क हो जाता है, स्टिल लाइक यू गेट स्टंड, भाव से विभोर होकर एकदम ऐसे पत्थर जैसे बन जाता है, नो मूवमेंट। तो वो वैसे अवस्था में स्तंभित हो गए, तो स्तंभित अवस्था में उनकी मूर्ति है पर्वत के ऊपर जिसमें आदमी प्रवेश नहीं कर सकते गोवर्धन के ऊपर, तो स्तंभित अवस्था में उनकी मूर्ति वहाँ पर है ढोका दाऊ जी, जो ढोक की अवस्था में है। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ कि बड़े भाई हैं, छोटे भाई को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, सेवा में है वो, शांतरस में भी है, दास्य में भी है, साख्य में भी है, वात्सल्य में भी है, माधुरी में भी है, लेकिन स आदर पूर्वक सेवा कर रहे हैं, रोब नहीं जमा रहे हैं। तो उनका उधर मुकुट भी है, और उनका जब वो ढोक की अवस्था में आए तो उनका क्राउन जो है वो ढल गया, और वो जो मुकुट था वो भी इतना भाव विभोर अवस्था में, तो वो पत्थर में उसका इम्प्रेशन आ गया, पत्थर भी पिघल गया, पत्थर में उस मुकुट का इम्प्रेशन आ गया। तो उधर मुकुटशिला भी है वहाँ पर, बलराम जी की मुकुटशिला। बड़ा अद्भुत है सब कुछ। हाँ, दुनिया में कोई भी शास्त्रीय तरीके से हम पत्थर को पिघला नहीं सकते, कोई भी साइंटिफिक तरीका नहीं है। लोहा सोना सबको पिघला सकते हैं हम लोग, लेकिन पत्थर को भी पिघला नहीं सकता है। पत्थर केवल भक्ति के दिव्य भाव से पिघलते हैं, इसलिए ब्रज में सब जगह पर भगवान के चरणों के, हाथों के, इसके उसके, लकुट के, मुकुट के, इधर उधर सब शिलाएं बनी हुई है। जय जय श्री राधे श्याम।